हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज के इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि क्योंकि हम संसार में बहुत दुखी रहते हैं और दुखों का कारण मिटाते मिटाते जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर दुख खत्म नहीं होते, तो सुखी होने के लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें सर्च करना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए, तभी हम सुखी हो सकते हैं। और ज्ञान के तीन प्रमाण मैंने आपको बताए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। उसके बाद इसमें से बताए कि उनमें से परफेक्ट प्रमाण कौन सा है, शब्द प्रमाण, जो कि शास्त्र में लिखा हुआ है। और उसके बाद किस प्रकार वेदों का क्षय हुआ, किस तरह वेद भगवान ने बनाए और फिर उनका नाश हुआ, श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण हुआ, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता सारे वेदों का सार के रूप में हमें दी, और गीता प्राप्त करने के बाद भी जो हमारी कंफ्यूजन थी कि कौन सी गीता पढ़ी जाए, उसके विषय में मैंने आपको बताया कि केवल भक्त ही भगवान को समझ सकता है, इसलिए भगवान के शब्दों को भी केवल भक्त ही समझ सकता है। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज जो श्री प्रभुपाद ने लिखी, क्योंकि एक ही हमारे पास ऐसी कॉमेंट्री है जो भक्त ने लिखी है, इसलिए हमें उसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं आपको आपके इस मनुष्य जीवन के विषय में थोड़ा बताती हूँ, क्योंकि जब तक आपको अपनी इम्पोर्टेंस नहीं खबर होगी तो दूसरे किसी चीज की इम्पोर्टेंस जानकर भी क्या फायदा। देखो, श्रीमद् भागवतम महापुराण 11 सिकंद में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण साक्षात खुद खड़े होकर कहते हैं कि उद्धव, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। लेकिन ये जब ये एक दफा तुम्हें मिल जाता है, मनुष्य देह जब एक दफा मिल जाती है, तो उसके द्वारा हर चीज इवन भगवान को प्राप्त करना भी सुलभम सुदुर्लभम, वो भी प्राप्त होना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल क्या है, मनुष्य देह है। यानी कि देखो डायमंड्स खरीदना कितना मुश्किल होता है, डायमंड अगर खरीदने जाएं तो मुश्किल होता है ना, लेकिन यदि किसी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में धन हो तो डायमंड खरीदना मुश्किल नहीं। उसी तरह से ये मनुष्य देह है जो है वो एक अमोलक हीरा है, और जब जिसके पास ये अमोलक धन प्राप्त हो जाता है तो उसके जरिए हम भगवान को, हालांकि भगवान बहुत कीमती हैं, एक्सपेंसिव हैं, लेकिन यदि मनुष्य देह किसी को प्राप्त हो जाता है तो सुलभ हम उसके द्वारा बहुत बहुत आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा सुदुर्लभ, ये आचार्य और भक्त कह के कर थक गए। वहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मनुष्य देह आपको बहुत ही मुश्किल से मिली है, बहुत दुर्लभ है। और वहां रामायण में श्री रामचंद्र जी भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य बड़े भाग मानुष्य तन पाया, सुर दुर्लभ और संत ही गाया। सुर मतलब देवताओं के लिए भी दुर्लभ, दुर का मतलब होता है बहुत कठिन, और लभ मतलब प्राप्त होना, बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला ये मनुष्य जन्म है। और यही चीज हमें बताई जाती है, बजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। ये जो मनुष्य जन्म है ना, वो सबसे ज्यादा दुर्लभ है, और उसके अंदर भी सत्संग अगर आपको मिल जाए तो फिर तो कुछ रह नहीं गया हासिल करने के लिए। सुदुर्लभ अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है। भागवतम के 5वें सिकंद में देवता कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कब हमें मनुष्य देह मिलेगा जिसके अंदर रहकर हम भगवान की भक्ति करें और आपको प्राप्त करें। और श्री कृष्ण जी उद्धव को कहते हैं, ये मनुष्य जन्म इस दुखमय संसार को पार करने के लिए एक नौका है। नौका का मतलब होता है कि ना वो नाव होती है ना, जिस चढ़कर किसी सागर को पार किया जाता है। आप कल्पना करो, इमेजिन करो कि आप महासागर के बीच में डूब रहे हो, और डूबते डूबते एक नौका आपके हाथ में आ जाती है। यानी कि ये जो संसार है ना, ये संसार सागर के समान है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, उसी प्रकार इस संसार में दुखी दुख हैं। सब लोग दुखी हैं और इस दुख रूपी समुद्र में गोता खा रहे हैं। विचार कीजिए भक्तों, आप समुद्र में डूब रहे हो, महासागर में फंस गए हो, परंतु डूबते डूबते यदि आपके हाथ में नौका लग जाए तब क्या होगा? ठीक उसी प्रकार हम इस संसार में, संसार रूपी सागर में गोते खा रहे हैं, दुख रूपी सागर में डूब रहे हैं और डूबते डूबते मनुष्य जीवन रूपी नाव हमें प्राप्त हो गई है। शास्त्र में आया है, संसार सागर गुई तत्च्छामि यो नर। फिर उसको अगर किसी को नर योनि प्राप्त हो जाती है, मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, नाव में बैठो और पार करो। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन तो होता ही है कि नाव अगर प्राप्त हो जाए तो सिर्फ नाव मिलना ही काफी है क्या? क्योंकि नाव को ड्राइव करना तो हमें आता ही नहीं है, पर इसका मतलब है केवल नाव मिलने से कुछ नहीं होता, इसको चलाने वाला कर्णधार भी चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं गुरु कर्णधार, मतलब इस नौका को चलाने के लिए गुरु कर्णधार है, और अगर नाव को चलाने वाला कोई नहीं है तो वो नौका समुद्र में जाकर कहाँ रुकेगी, उसका कोई भरोसा नहीं। वैसे ही इस मनुष्य जीवन को चलाने वाला यदि कोई गुरु नहीं है तो कहाँ जाकर नरक में खड़े हो जाएंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। गुरु प्राप्त किए बगैर हमें ये समझ में नहीं आएगा कि शास्त्र में क्या लिखा है, इस मनुष्य देह को हमें कैसे ना यूज करना है, किस तरह से इसको, इस शरीर को यूज करके हम कृष्ण लोक तक पहुंच सकते हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, गीता पढ़ लो बस काफी है, क्योंकि गीता ही तो सार है। लेकिन भक्तों, यदि आपका बच्चा एक स्कूल में जाता है तो स्कूल में क्या होता है, टेक्स्ट बुक होती है और टीचर होते हैं, उसको पढ़ाते हैं। यदि आपको कहा जाए कि स्कूल में मत भेजो, बस बुक दे दो पढ़ लेगा, पढ़ सकता है? नहीं, इसलिए उसको टीचर की जरूरत होगी, अर्थात टीचर यानी गुरु की बहुत बहुत आवश्यकता है। वही टेक्स्ट बुक है, अगर वो घर पे पढ़ेगा तो कभी भी वो है ना एग्जाम्स में पास नहीं हो सकेगा, डिग्रीज नहीं ले सकेगा। तो ये भगवद गीता, अब ये संसार की साधारण शास्त्र पढ़ने के लिए आपको टीचर की जरूरत होती है, तो ये भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान पढ़ने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं है? निश्चित रूप से गुरु की आवश्यकता है। भगवद गीता कोई साधारण बुक नहीं है, इसमें कई सारे सिद्धांत बताए गए हैं। ये सिद्धांत कैसे लागू किए जाते हैं और किस तरह से इन सिद्धांतों को समझना है, केवल मात्र गुरु ही हमें बता सकता है। जैसे कि अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो व्यक्ति मेडिकल स्टोर से दवाई ले ले तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर भी दवाई देगा, कोई मंत्र नहीं देगा, उसके ऊपर जादू टोना नहीं करेगा। परंतु कोई व्यक्ति कितना बीमार है और उसे किस मेडिसिन का कितना डोज देना है, वे केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं। इसी प्रकार शास्त्र के उपदेश को किस तरह से प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है, वो केवल गुरु ही बताते हैं। देखो, गुरु करना बहुत बहुत जरूरी है। गुरु करने से परम सत्य को जानना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे क्या होता है, हम परम सत्य के विषय में नहीं जानते, जो जानता है वही हमें बता सकता है। जैसे अगर आप ली मार्केट में रहते हो और आपको सदर इम्प्रेस मार्केट में जाना है जहाँ पर सेंट पैट्रिक स्कूल है, अगर आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो, अपने हिसाब से उसको अपनी बुद्धि से ढूंढना चाहते हो, तो बहुत मुश्किल से मिलोगे, हो सकता है मिले भी नहीं। लेकिन किसी पॉइंट पर पहुंचकर अगर किसी पान वाले से भी पूछ लेंगे कि सेंट पैट्रिक स्कूल देखा है, तो बोले फौरन बता देगा हाँ, यहाँ से स्ट्रेट जाइए और साइड में राइट साइड टर्न कर दीजिए, वहां पर स्कूल है। उस टाइम पर वो पान वाला जो केबिन वाला है वो आपका गुरु बन जाए, यानी कि जिसने सत्य को देखा है, जिसने उस जगह को देखा है, वो आपको बता सकता है। तो गुरु, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, केवल गुरु ही समझ सकता है। जो तत्वदर्शी गुरु होते हैं वही आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। गुरु क्यों करना जरूरी है, उसका सेकंड पॉइंट, जब भगवान इस संसार में आए हैं तो उन्होंने भी गुरु किया। भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी, वो तो गुरुओं के भी गुरु हैं। वास्तव में गुरु का अर्थ समझने की अत्यंत आवश्यकता है। लोग तो गुरु का अर्थ भी अपने अपने मतानुसार लगाते हैं। लेकिन गुरु का शब्द जो शास्त्र में कहा गया, गुरु शब्द अंधकार अस्ति, गुरु का मतलब होता है अंधकार, रू शब्द तत्व निरोधक, गुरु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। हमारे वेदों शास्त्रों में अज्ञान की तुलना अंधकार से की गई है और ज्ञान की तुलना प्रकाश से की गई है। ओम अज्ञान तिमरंतस्य। इस संसार में जो व्यक्ति अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश तक ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो आप बताइए, क्या भगवान को ज्ञान की आवश्यकता थी? अरे जिससे ज्ञान स्टार्ट होता है, संसार के समस्त गुरुओं को ज्ञान देने वाले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसने आदि कवि ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया, वह भगवान भी संसार में आते हैं तो गुरु बनाते हैं। तो हम जैसे मूर्ख लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं भी संसार में आता हूँ तो गुरु बनाना पड़ता है, तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? सांसारिक कोई भी चीज सीखने के लिए हम गुरु बनाते हैं, बाकी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बस एक दफा क्लास में बैठ गए, चार सवाल कर दिए, समझ में आया तो ओके, नहीं आया तो ओके। ये थोड़े हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को सिक्योर करना है, उसके लिए गुरु। देखिए भगवान श्री राम आए तो उन्होंने भी गुरु बनाया, पता है श्री राम के गुरु का नाम विश्वामित्र। कृष्ण आए तो उन्होंने सांदीपनि मुनि को गुरु बनाया, चैतन्य महाप्रभु आए तो ईश्वरपुरी को गुरु बनाया। भगवान भी गुरु बनाते हैं हमको बताने के लिए कि मुझ जैसे भगवान को भी गुरु की आवश्यकता है, तो तुम जैसे साधारण जीव को गुरु कैसे नहीं चाहिए? गुरु की फोर्थ योग्यता, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे ज्ञान नहीं मिलेगा। भले आप कितना भी शास्त्रों को पढ़ लो, कितना ही सीख लो, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। नॉलेज प्राप्त हो जाएगी, ज्ञानी मतलब हो सकोगे, लेकिन आपको कभी भी उसका सही उपयोग अपने जीवन में किस तरह से करना है ये पता नहीं। बल्कि गुरु के बगैर अगर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी करेंगे तो अहंकार याद आएगा। इतिहास खोल कर देख लीजिए, जिस जिसने गुरु बनाया उसी को ज्ञान मिला है। उसकी ज्वलन प्रमाण है अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन को ही देख लीजिए, अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान तब तक नहीं दिया जब तक वो भगवान के शिष्य नहीं बने। भगवत गीता वास्तव में दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 7 से स्टार्ट होती है। पहले अर्जुन और कृष्ण केवल मित्र थे। भगवान सब कह दिए कि युद्ध, भगवान ने साथ सब उनको बताया कि भाई युद्ध करो, करना चाहिए तुमको, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जब तक अर्जुन उसकी शरण में नहीं आए, अर्जुन ने 2.7 में भगवान से कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छयामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेताहा यच्छ्रेयः स्या निश्चितं रोहितं मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। हे कृष्ण, मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना पूरा धैर्य खो चुका हूँ। हे कृष्ण, ऐसी अवस्था में जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। अब तक तो मैं आपका मित्र हूँ, मित्र था, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मुझे गुरु बन, मेरे गुरु बन जाइए। और जैसे ही अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया, कृष्ण ने उपदेश करना शुरू किया, गुरु बन गए ना, फिर उपदेश आरंभ हुआ। और आरंभ करते ही बोले, क्या बोले हैं कृष्ण 2.11 में, अशोचानन शोचस्व प्रज्ञा वादाश्च भासते गतासु ना गतासु नानु शोचन्ति पंडिता। बातें तो बड़ी पंडिताई जैसी कर रहे हो, लेकिन हो तो तुम बड़े मूर्ख। क्यों? क्योंकि न तो एवाहम ना तो जातम न तो नेमे जनादिपा न चैनम न भविष्यामः सर्वे वयमतः परो। जो एक गुरु को अधिकार है अपने शिष्य को मूर्ख कहने का। भगवान ने कहा मूर्ख, इस संसार में हम सब आत्मा हैं, आत्माएं कभी नहीं मरती हैं, जिसने जन्म लिया है वो शरीर है और शरीर का तो अंत होना ही है। आगे कहते हैं 21 में, न जायते मृजयते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वानभूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न कभी जन्मी है न जन्म लेती है और न ही जन्म लेगी। इस संसार में कोई भी ताकत इस आत्मा को मार नहीं सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम खेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। ये सब भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को कब दिया? जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया। गुरु करना बहुत जरूरी है। भगवान साक्षात हमेशा हमें बताते हैं कि गुरु करना ही चाहिए। अब भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु करना बहुत बहुत लाजमी है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है प्रथम गुरु पूज्य ततश्चैव मम शरणम यानी कि सबसे पहले गुरु की पूजा होनी चाहिए, उसके बाद भगवान कहते हैं मेरी पूजा। और भगवान ने अंत में यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य जीवन पाकर यदि कोई गुरु नहीं करता, पुमान भवा भी न तरोस्ति आत्मा, हा वो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, अपने अस्तित्व को नष्ट करने वाला है जो इस जीवन में गुरु नहीं बनाता है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु के सामने झुकता नहीं है तो उसका तो सर ही काट कर फेंक देना चाहिए। सो सर कटी सम भर तुला जो न निमत गुरु हरि पद मूला। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं संसार दावा नलनी धलो का, संसार में मात्र दुख ही दुख है। जैसे जंगल की दावाग्नि को कोई बुझा नहीं सकता, वैसे ही संसार के दुख को कोई नहीं मिटा सकता। जैसे घनघोर घटा से मेघ नहीं बरसते तब तक जंगल की आग नहीं बुझती है, उसी तरह जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है इस संसार के दुख कभी खत्म नहीं होने, इसीलिए गुरु जरूरी है गीता को समझने के लिए। तो मेरे हिसाब से मैंने ये समझा दिया है कि गुरु करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है कि गुरु करना क्यों जरूरी है, अब तक अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर सेकंड प्रश्न तो ये उठता है कि ठीक है, मान लिया कि गुरु करना जरूरी है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? आज के समाज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गुरु कौन हो, क्योंकि आज इस संसार में हर जगह पर बोगस गुरु मिलेंगे जो प्रवचन तो बहुत अच्छा करते हैं परंतु आचरण बिल्कुल नहीं। खैर, हमें भगवान ने बुद्धि दी है तो इस बुद्धि का इस्तेमाल योग्य गुरु ढूंढने में कीजिए। हम इसके अलावा हर जगह पर बुद्धि लगाते हैं, मगर यह बुद्धि जो हमें मिली है ना, कि वो सिर्फ एक अच्छा गुरु बनाने के लिए। गुरु किसी को भी बना लेते हैं, कोई भाई किसके चेले हो, भाई मैं इसके चेला हूँ, वो किसका चेला पता नहीं, चेला भी है या नहीं है, बस गुरु बना दिया उसको, मेरे ठप्पा लगाना है, बस यही करते हैं सब बोलते हैं चलो गुरु बनाओ, इसको गुरु बनाओ। लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुरु कैसा होना चाहिए। कुछ सोचते हैं कि यदि अच्छे गुरु मिल गए तो इस जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, और यदि कोई ठग गुरु मिल जाएगा तो हमारा पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। देखिए, अगर एक क्लास में आपको एक टीचर जो है ऐसा मिल जाता है जो उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है तो आपका पूरा साल जाया होगा, और फिर हमें पता चले भाई ये ट्यूशन टीचर तो सही पढ़ा ही नहीं रहा था, ऐसे ही खुद तो सारा दिन मोबाइल में लगा रहता था और हमें बोलता था पढ़ो और फिर एग्जाम में फेल हो जाएंगे, पूरा साल जाया हो जाएगा। तो कितना दुख होगा कि ऐसे टीचर के पास हम लोग गए जो बिल्कुल ऑथेंटिक ही नहीं था। उसी तरह से यदि गुरु गलत मिल गया ना, अगर इसको ये भौतिक टीचर रॉन्ग मिला तो क्या होगा, एक साल जाया होगा, फिर बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अगर गुरु गलत मिल गया तो हमारा पूरा जीवन ही बेकार मिल जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, अंधे व्यक्ति को अगर रोड क्रॉस करना हो तो अंधे का हाथ पकड़ लेगा तो दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम ये जानिए कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की योग्यताएं क्या होती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु कैसे गुरु से हमें सुनना चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं गलत हो सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंद्रियों में चार दोष होते हैं, लेकिन परफेक्ट प्रमाण क्या होता है, शास्त्र प्रमाण, जो शब्द प्रमाण होता है वही कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसलिए हम शास्त्र से जानेंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु की ज्यादा नहीं, बस पांच योग्यताओं का वर्णन करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि गुरु कैसा होता है। पांच योग्यताएं गुरु योग्यताएं क्वालिफाइड अगर किसी के पास है तो वो गुरु बन सकता है, अन्यथा अगर उसके अंदर ये पांच चीजें नहीं है तो उसको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु की पहली योग्यता कि वो गुरु अपने आप को भगवान ना माने बल्कि भगवान का दास माने। तो इस संसार के 50% गुरु रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे सारे गुरु शुरू में तो यही गीता और भागवत का ज्ञान देते हैं और अंत में बताते हैं कि जो भागवत और गीता बताने वाले वो हम ही हैं, हम ही को पूजो बस काफी है, सबसे पहले तो मेरी शरण में आओ, भगवान की तो बात ही नहीं बताते, बाद में भगवान को वहां से निकाल ही देते हैं। लेकिन और फिर अगर उनसे पूछा जाए कि भाई भगवान कहाँ, यहाँ तो सिर्फ तुम्हारे आश्रम में तो खाली तुम्हारी ही पूजा होती है, तो बोलते हैं कि मेरी पूजा मैं थोड़ी करवाता हूँ, ये तो मेरे शिष्य कर रहे हैं, अब शिष्य कर रहे हैं तो मैं उनको मना कैसे कर सकता हूँ, वो मुझे भगवान का अवतार समझते तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या उनका प्रचार होना चाहिए, जो शिष्य कह रहे हैं उनका प्रचार होना चाहिए, जो गुरु कह रहा है, गुरु कह रहा है भगवान कृष्ण है तो भगवान की बात, वो तो शिष्य, उस शिष्य को तो शिष्य स्वीकार ही मत करो जो तुम्हारी बात को निग्लेक्ट करके अपनी बात को आगे करा रहा है। तो पहला गुरु की पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को भगवान ना माने। हमें उस गुरु से ज्ञान लेना चाहिए जो खुद को भगवान ना कहे बल्कि भगवान का दास कहे। तब कुछ लोग कह सकते हैं कि शास्त्र में तो लिखा हुआ है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंतु शास्त्र को समझने के लिए शास्त्र के श्लोक को सही तरह से समझना अनिवार्य है। जैसे अगर कोई बोलता है, अगर कोई पानी पानी दे, आपको पानी दे रहा हो और आप उसको बोलो बस, इसका मतलब होता है बस अभी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आधा गिलास भरा और रुक गया और आप बोलो बस, इसका मतलब है इतना थोड़ा पानी। देखिए शास्त्र में जो संस्कृत होती है ना, उसको हमारे गुरु महाराज, शिक्षा गुरु महाराज कहते थे कि ये चिकनी मिट्टी की तरह है, उसको आप जैसे चिकनी मिट्टी को हाथ में लेकर जैसी शेप दोगे ना, वो वैसा ही बन जाएगा। तो एक सच्चा गुरु, एक सच्चा भक्त ही हमें बता सकता है कि शास्त्र के इस वचन का क्या मतलब है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु ब्रह्मा, इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मा जी की तरह ब्रह्मा है और सृष्टि का उत्पन्न करते हैं। गुरु को ब्रह्मा जी की तरह आदर देना चाहिए, विष्णु की तरह आदर देना चाहिए, महेश की तरह आदर देना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए। अगर गुरु ब्रह्मा होते तो ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि की रचना की है। गुरु तो सन्यासी होते हैं, विवाह भी नहीं करते, तो क्या वो है ना ब्रह्मा जी हो सकते हैं? और सब तो छोड़े, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, महेश का मतलब पता है जो प्रलय करते हैं, प्रलय का अर्थ होता है मार देना। शिव जी पूरे ब्रह्मांड को मार डालते हैं, अगर गुरु एक भी व्यक्ति को मार डालेंगे तो फांसी हो जाएगी। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, गुरु तो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें इनके विषय में बताते हैं, इसलिए हमें उनकी तरह इन गुरु महाराज की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। गुरु की दूसरी योग्यता, गुरु भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। अब आप कहोगे कि हम कृष्ण के भक्त हैं इसीलिए कह रहे हैं कि गुरु कृष्ण का भक्त होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र की बात बता रही हूँ। शास्त्र में कहा गया, चैतन्य चरितामृत कहता है कि वह विप्र किबा न्यासी शुद्र केने नया यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। जो ये है ना, चाहे वो कितने विप्र हो, सन्यासी हो, शुद्र हो, जो भी हो, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व वेता है, कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता है और आपको कृष्ण के विषय में ज्ञान दे सकता है, तो उसे आप गुरु बना सकते हो। और आगे तो यहाँ तक कह दिया, षट कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव स्वपच गुरु। अगर कोई मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति षट कर्म निपुण विप्र, वो ब्राह्मण है और अपने सारे कार्य बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से करता है, मंत्र तंत्र विशारद, सारे मंत्र सारे तंत्र में बिल्कुल एक्सपर्ट है, अवैष्णव गुरु न स्याद, अगर वो वैष्णव नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, तो खबरदार उसे गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी हो। और वैष्णव स्वपचा गुरु, और अगर किसी ने अपने पिछले जीवन में सुअर भी खाया होगा, स्वपच अगर इतना ही वो घन कोई घिनौना अपराध भी किया होगा, फिर भी अगर यदि वो वैष्णव बन जाता है और कृष्ण तत्व को जानने लगता है और कृष्ण के विषय में आपको सब कुछ बता सकता है, भगवान का भक्त बन गया है, तो आप वैष्णव स्वपचो गुरु, तो आप उसको गुरु बना सकते हो। इसी तरह से गुरु की पहली योग्यता कि वो अपने आप को गुरु ना, अपने आप को भगवान ना समझे बल्कि भगवान का दास समझे। दूसरी योग्यता के गुरु भगवान का दास होना चाहिए। और गुरु की तीसरी योग्यता के गुरु जो उपदेश दे, उस उपदेश का पालन पहले गुरु के जीवन में होना चाहिए। वो ऐसा प्रचार ना करे जो कि खुद नहीं कर रहा, यानी कि जो जो बातें वो बता रहा है उसके जीवन में उसका पहले वो आचरण करके दिखाए, वो खुद पहले वो करे। अगर गुरु आपको कह रहा है कि आपको मंगल आरती करनी है, आपको चोला माला जप करनी है, तो पहले उसके आचरण में ऐसा होना चाहिए। वो खुद ना लहसुन प्याजा कांदा वगैरह खाते हैं और बोलते हैं आपको अपने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पहले भगवान को खिला के फिर खाना चाहिए, ऐसा ढोंगी गुरु नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति गुरु बन सकता है जो कि आचार्य हो। गुरु को आचार्य होना चाहिए। और गुरु की चौथी योग्यता, गुरु को अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ऐसा श्री रूप गोस्वामी उपदेश अमृत के पहले श्लोक में बताते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वम अपीमाम पृथ्वीम च शिष्या। जो अपने वाणी के वेग को, मन की इच्छाओं को, मन की मांगों को, क्रोध के वेग को, जबान और पेट और जनन इंद्रिय के वेग को रोक सकते हैं, वही गुरु बन सकते हैं। ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। बहरहाल यहाँ पर तो गुरु की चौथी योग्यता ये, जिसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हो, जो अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है, जो वाणी के वेग को रोकने के लिए श्री प्रभुपाद ने बताया है। वाणी का वेग का मतलब, रोकने का ये मतलब नहीं है कि आप बोलना ही छोड़ दो कि भाई मैं अपने वाणी को कंट्रोल कर रहा हूँ, बोलना ही। गुरु वो है जो केवल और केवल कृष्ण के विषय में बोले। मन के वेग का मतलब ये नहीं है कि आप मन से कोई इच्छा ही नहीं करो, इच्छा करनी है तो केवल और केवल कृष्ण की संतुष्टि करने के लिए इच्छा करो। वही निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम प्रेम। ये अपने हृदय में, प्रेम का मतलब ये नहीं कि संसार के किसी चीज के विषय में आप सोच रहे हो उसे आप प्रेम कहते हो, वो तो इच्छाएं है, वो सिर्फ वासनाएं हैं। कि हृदय में एक वासना रखी हुई है, एक शायर बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है कि दावा प्रेम का और आरजू जिस्म की, यदि ये प्रेम है तो हवस क्या है। तो संसार में जो कुछ भी हमें, भगवान के अतिरिक्त हम जो कुछ भी चाहते हैं, वो केवल और केवल हमारी वासना होती है। उसको हम, वासना को छुपाने के लिए उसको प्रेम का नाम दिया जाता है। लेकिन गुरु का मतलब यह है कि वो अपने मन की वासनाओं को रोक सके, क्रोध की क्रियाओं को रोक सके, अपने जबान और वाणी को रोक, वेग को रोक सके, पेट की जो ये मांग, ये खाओ वो खाओ, जैसे जिह्वारे लालसा यदि इति उति ढाए शुश्रुदात पाए कृष्ण नाय पाए। कभी ये खाना चाहिए मुझे, मैं पिज्जा बर्गर ये खाना चाहता हूँ, ऐसा गुरु नहीं होता है। गुरु को अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। और गुरु की सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता ये है कि गुरु, वो गुरु जिसे हम ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, वो किसी संप्रदाय के अंतर्गत गुरु होना चाहिए। यानी कि गुरु जो है वो परंपरा से होना चाहिए, संप्रदाय यानी किसी न किसी से जुड़ा हुआ। ऐसे ही अगर कोई खड़ा हो जाता है या व्यास आसन पर बैठ जाता है कि आ जाओ चेले बन जाओ मेरे, तो उसको गुरु नहीं बनाया जाता है। गुरु एक संप्रदाय से होना चाहिए। जैसे अब आपको बताऊं कि इस संसार में, अभी इस कलयुग में हमारे पास कितनी संप्रदाय है। हमारे पास मूल मुख्य चार संप्रदाय हैं। इसके अलावा जितनी भी संप्रदाय हैं वो ढोंगस हैं, वो बिल्कुल मनगढ़ंत संप्रदाय हैं। जैसे चार संप्रदाय कौन सी हैं? भगवान श्री कृष्ण ने, पहली संप्रदाय, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और उससे ब्रह्म संप्रदाय उत्पन्न हुई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, उससे रुद्र संप्रदाय आई। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, उससे श्री संप्रदाय। और भगवान श्री कृष्ण ने चार कुमारों को ज्ञान दिया, उससे कुमार संप्रदाय उत्पन्न हुई। तो भक्तों, अब इन संप्रदायों के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुमारों को ज्ञान दिया, चार कुमारों को, उससे कुमार संप्रदाय। और उसके वाइस चांसलर हुए निम्बक आचार्य। और ये कुमार संप्रदाय इस कलयुग में प्राय लुप्त हो गई है, बहुत ही कम, कहीं नजर नहीं आते इसके कोई भी शिष्य या इसके पैरोकार नहीं नजर आते हैं, आपको नहीं मिलेंगे इसके। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, उससे श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के वाइस चांसलर हैं रामानुज आचार्य। और ये संप्रदाय अभी तक ऑथेंटिक है, लेकिन ये कहाँ पर इसका प्रचार होता है? भारत दक्षिण भारत में श्रीरंगम में अगर आप वहां पर जाओगे तो इस लक्ष्मी संप्रदाय के आपको अनुयायी मिलेंगे। यदि आप उनसे दीक्षा लेकर उनको गुरु बनाते हो तो वहां से आपको परफेक्ट ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस वो इन इस ये जो संप्रदाय है उसका ज्ञान का प्रचार जो है वो हर जगह नहीं हो रहा है, इसलिए सिर्फ वहीं पर हो रहा है। उसके बाद है शिव संप्रदाय, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया था उससे रुद्र संप्रदाय आई थी और उसके आचार्य हुए वल्लभ आचार्य, विष्णु स्वामी जो है वो इनके वाइस चांसलर हुए। लेकिन आपको मैं बता दूं उस संप्रदाय में यानी जो रुद्र संप्रदाय है उसमें प्रचार नहीं होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कैसे सारे शास्त्रों का तात्पर्य दिया है और उनके अनुयायी सारे प्रचार कर रहे हैं और जगह जगह परिविजयकारी आचार्य हर जगह पर जाकर प्रचार कर रहे हैं, ऐसा रुद्र संप्रदाय में ऐसा नहीं होता। उसमें पता है क्या होता है, उसके जो अनुयायी है ना बस वही एक हवेली में जाते हैं, भोजन वहां पर होता है, एक हवेली उनके जो मंदिर होते हैं उनमें कोई विग्रह वगैरह नहीं होती, बस हवेली होती है वहां पर जाके भोजन कराया जाता है और छुट्टी, कोई प्रचार, कोई व्यास आसन नहीं होता है, कोई प्रचार नहीं होता है। इसलिए उनकी संप्रदाय से ज्ञान लेना बहुत, मतलब जो आ रहे हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संप्रदाय में वही होते हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रचार ही नहीं होगा तो फिर फैलेगा कैसे। और अब ये तीन संप्रदाय तो मैं आपको बता दी, कुमार संप्रदाय प्राय लुप्त हो गई है, श्री संप्रदाय श्रीरंगम में मिलेगी, रुद्र संप्रदाय में आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बची केवल एक ब्रह्म नारद गौड़ेया संप्रदाय। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और उससे आई ब्रह्म नारद गौड़ेया संप्रदाय, और ये सारी संप्रदाय जो हैं वो वैसे तो कृष्ण और राम की भक्ति ही बताते हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म नारद गौड़ेया संप्रदाय है वो एक ऐसी संप्रदाय है जो हम तक पहुंची है। जैसे श्री प्रभुपाद जिसके अंतर्गत आते हैं वो पता है कैसे स्टार्ट हुई, मैं आपको इसके विषय में थोड़ा बता देती हूँ फिर वहां पर वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद को, नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने अपने शिष्य मधु आचार्य को। अब देखो जो कृष्ण से ज्ञान आया ना वो कहाँ तक पहुंचा है, मधु आचार्य तक, ठीक है। उसके बाद मधु आचार्य ने अपने शिष्य पद्मनाभ आचार्य को, उसके बाद नरहरि स्वामी को, उसके बाद माधव आचार्य को, और माधव आचार्य ने ये सारा ज्ञान जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था वही आ रहा है सादा, और वो जय तीर्थ स्वामी जी को दिया। जय तीर्थ स्वामी ने ये सारा का सारा ज्ञान सिंधु को दिया, उसके बाद विद्यानिधि ने अपने शिष्य राजेंद्र तीर्थ स्वामी, और उसके बाद जयधर्म स्वामी, जयधर्म ने अपने शिष्य पुरुषोत्तम को, और पुरुषोत्तम ने अपने शिष्य ब्रह्मण्य तीर्थ को। वही ज्ञान जो कृष्ण से उत्पन्न हुआ था सर्वप्रथम, वो आज ब्रह्मण्य तीर्थ ने अपने शिष्य व्यार्थ तीर्थ को दिया, और व्यार्थ तीर्थ ने अपने शिष्य लक्ष्मीपति जी को, लक्ष्मीपति ने वही ज्ञान मद्वेंद्रपुरी को दिया, और मद्वेंद्रपुरी ने वही ज्ञान ईश्वरपुरी को दिया। ईश्वरपुरी पहुंच गए, ईश्वरपुरी को जानते हैं आप सब, वो जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अब देखिए जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था वही ज्ञान ईश्वरपुरी के पास पहुंचा। अब क्योंकि परंपरा से जुड़े हुए हैं, जैसे बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जो वहां है वही यहां पर पलक पॉइंट में भी है, तो जो ज्ञान ईश्वरपुरी के पास था वही ज्ञान कृष्ण से डायरेक्ट, अब केबल से कनेक्ट हुआ है ना, हमने लाइन से पूरा एक से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चौथे अध्याय में बताते हैं एवं परंपरा प्राप्त, इस तरह से परंपरा से जो ज्ञान आता है वो बिल्कुल खंडित नहीं होता है, क्योंकि जैसा हमने अपने गुरु महाराज से सुना होता है वैसा ही हम दूसरे को सुनाते, तो ये ज्ञान इज इट इज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये ज्ञान ईश्वरपुरी के पास पहुंचा वही ज्ञान जो कृष्ण से स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर ईश्वरपुरी बहुत बूढ़े हो गए थे, वो प्रचार नहीं कर सकते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बहुत शुद्ध परंपरा है, मुझे ये परंपरा तोड़नी नहीं चाहिए। यद्यपि भगवान को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान तो जाके श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े सो वह कौतुक भारी, कि जिसके भगवान के श्वासों से वेद निकलते हैं वो भगवान भी गुरु बना रहे हैं, तो ये तो बहुत कौतुक की बात लगती है। लेकिन भगवान इस परंपरा को रिफ्रेश करना चाहते थे। साक्षात भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया और फिर उन्हीं चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। ईश्वरपुरी ने वही ज्ञान चैतन्य महाप्रभु को दिया, चैतन्य महाप्रभु ने वही ज्ञान रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी ने वही ज्ञान अपने शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी ने वही ज्ञान कृष्णदास कविराज महाराज को, कृष्णदास कविराज महाराज से वही ज्ञान नरोत्तम दास ठाकुर, और नरोत्तम दास ठाकुर से वही ज्ञान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से वही ज्ञान आया जगन्नाथ बाबा जी के पास। जगन्नाथ बाबा जी के शिष्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य हुए ऐसी भक्ति वीरांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। और इसी तरह से वह ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण से आया है, परंपरा से आते 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 हम तक श्री प्रभुपाद ने ये ज्ञान पहुंचाया है, और वही ज्ञान पूर्ण और शुद्ध ज्ञान है जो परंपरा से प्राप्त होता है। तो यही एक कलयुग में परंपरा बाकी रह गई है, बाकी सारी परंपरा है लेकिन कुछ लुप्त हो गई है और कुछ में प्रचार नहीं हो रहा है। यदि आपको शुद्ध ज्ञान चाहिए तो यदि आप श्री प्रभुपाद के संप्रदाय में किसी एक शिष्य से, उनके किसी ऑथेंटिक शिष्य से अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो वो ऑथेंटिक ज्ञान है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रेज होता ही है कि हम नहीं जा सकते, हम शिष्य तो स्वीकार नहीं कर सकते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये वो। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इच्छा करनी है, भगवान के सामने जाकर ये इच्छा करनी है कि मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहती हूँ, मैं अपने मनुष्य जीवन को इस तरह से बेकार जाया नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर शुद्ध हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, और कोई ना कोई शुद्ध गुरु आपको जरूर मिलेगा, जिस तरह से ध्रुव को मिला था। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, हमें सिर्फ क्या करना है, हृदय शुद्ध रखना है और सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। सारा का सारा जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है वो सारा का सारा खत्म करने की ड्यूटी भगवान की है, उस मंत्र की है जो आप जप करते हो, लेकिन उस मंत्र में आपकी कितनी श्रद्धा है उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। सदैव जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व हो जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।